प्रवचन सार, प्रवचन सुधा पुस्तक 9वी, लेक्चर नंबर 726। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताम्, नमो सिद्धाम्, नमो आयरियाणम्, नमो वर्षायाणम्, नमो लोए सौवसाहूनम्। सुर असुर नरपति वंदने प्रविनाश भाकी कर्मने प्रणमन करो हो ब्रह्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वैशेष तीर्थंकर ने सौसिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान ध्रुव चारित्र तप वीर्याचरण संयुक्त ने ते सर्व ने साथे तथा प्रत्येक ने प्रत्येक ने वंदो आए हो मनुज क्षेत्र वर्तता अरिहंतने अरिहंतने सौसिद्धने यो नमस्करण करिए रिते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञानमु च पवित्र आश्रम पानिने प्राप्ति करु साम्यनि जेनापि शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुमकुम भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्युक्ति टीका की रचना की है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं, वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये 9वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 80 पर हम आ गए। 80 हाँ, कुछ कह रहे थे?
ये 86 पर 204 नंबर की गाथा की बात है, तो यहाँ 81 पर भी उसी के बाद 204 की होनी चाहिए।
नहीं सर,
204 हो गया है। नहीं नहीं, 86 पर उन्होंने 204 फिर दोबारा थोड़ी ली है। हाँ, वो फिर पढ़ेंगे हम तब। हाँ, और 205-6 94 से शुरू होते हैं। नहीं नहीं, 204 से प्रवचन 86 पर चालू है और ये बीच में 200 हाँ, और बाद में वो गाथा ही ली है। पहले हम उसको ले लेते हैं फिर। हाँ, यहाँ हम लिख के रखेंगे 80 पेज पर, लिखो पेज नंबर
86। ये जो है वो
5 और 6 नंबर का जो जुगल गाथा है, एक्चुअली क्या है वो बीच में नहीं डालना था ना, इसलिए उन्होंने यहाँ रख दिया। और 4 तो चालू है और आगे उन्होंने जो गाथा ही लिए 92 में। 94 पर केवल उन्होंने वो जुगल करके लिखा है, उसकी टीका है वो सब यहाँ लिखा है। इसलिए अभी हम 86 से पढ़ेंगे। क्या वो 205-6 का ही है, उसी के बारे में है वो 204 का नहीं है। ख्याल में है ना क्या बात है? 204 की जो उसका जो प्रवचन है वो चल रहा है, बीच में उन्होंने 5 और 6 गाथा वहां लिख दी है, गाथा है उसकी टीका है। देखो प्रवचन सार 204 गाथा मिला, पेज नंबर 86। आपको अच्छा ख्याल में आ गए, आपने पहले देख लिया, अब क्या देख रहे?
ये जो हमने देखा था इतना बड़ा एक घंटे में,
वो प्रवचन नंबर है ना वो अलग है।
नहीं नहीं, तारीख 17-6 पेज नंबर 66।
ये 19-6 है,
17-6
और ये 19-6। वही 204 से 206 और ये प्रवचन नंबर 7 है, बीच में कुछ गया नहीं है। चलो निकालो 86 पेज, प्रवचन सार 204 का था। क्या देखो देखो, यथा जात रूप तो इसमें भी है, इसमें भी आया है यथा जात रूप, और पहले में भी आया है। पहले में तो उन्होंने अलग अलग अपेक्षाओं से बताया। देखो 204 के लास्ट शब्द है ना, यद जद रूप धरो, यथा जात रूप धर, और यहाँ पहला शब्द है 205 में। क्या क्या कह रहे थे? 87 पर ये जो 204 की टीका के है बोल लेटर्स,
मैं देखी वहाँ पे मैच नहीं हो रहा है।
कैसे नहीं हो रहा? देखो जो श्रामण्यार्थी चाहता है वो निकालो, 204 जहाँ है था, भावार्थ होगा।
हिंदी में,
हाँ
वर्डिंग
बराबर टीका की बात है। ये श्रामान्य अर्थी वगैरह वहीं की बात है वो। चलो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, 86 पढ़ेंगे, यानी यहाँ हमारे ये प्रवचन 726 वाला है, लेक्चर 726। हाँ ये पीछे के पेजेस हम बाद में पढ़ेंगे। 204 गाथा क्या चलता है? जो साधु होना चाहते हैं, जिनको हमने श्रामण्यार्थी कहा था, वे पहले क्या करते हैं वह बात चलती है। पहले उसे समय दर्शन तो होता ही है। ये कौन सा जीव है जो समय दृष्टि है, ऑलरेडी अपना अनुभव कर लिया है और अधिक स्थिरता करना चाहता है। साधु होने वाले को पहले समय दर्शन होता है, पहले ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, वह अपने आ गया है। वो तो उन्होंने बहुत बार उसकी बात बताई है। सम्यक दर्शन ज्ञान तो है ही है, चारित्र तो है सम्यक, परंतु और अधिक स्थिरता चाहते हैं। मैं ज्ञानानंद हूँ, शुद्ध चैतन्य आनंद हूँ, मेरे में संसार या विकल्प कुछ है नहीं, ये विकल्प ही संसार है। मेरे में संसार नहीं का अर्थ क्या है, ये जो राग है भव भी नहीं और भव के भाव भी नहीं, तो मेरे में संसार नहीं है या विकल्प कुछ है नहीं। देखो आगे क्या लिखा है, संसार जो राग भाव और मिथ्या तो भाव है वह संसार है। संसार हम किसको समझते हैं, ये हमारे संयोग है, ये है, ये संसार नहीं है। मिथ्यात्व और राग आदि है वही संसार है, यहां लिखा है स्पष्ट शब्दों में। और क्या कहते हैं, मेरे में ये नहीं है। तो मेरे में नहीं है तो क्या प्रश्न है, फिर क्यों पुरुषार्थ करना, बोलो 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 दक्षा भी। हाँ पर्याय में नहीं, देखो ये मेरे में नहीं है जब कहते हैं तो मेरे स्वभाव में, जिसको मैं कहना है, स्वभाव को ही मैं कह दिया और पर्याय को जुदा स्थान दिया, इसलिए मेरे में नहीं है, नहीं स्वभाव में तो है ही नहीं है। परंतु स्वभाव में नहीं फिर भी तू दुखी क्यों है, क्योंकि पर्याय में अभी राग है, तो जितने अंश में राग है उतने अंश में दुखी भी है, ये कह रहे।
आप पेज नंबर फिर से रिपीट करें।
पेज नंबर 86 है। हाँ, और उस 86 पर हम देख रहे हैं, क्योंकि बीच के जो पेजेस है ना वो कुछ आगे आने वाली जो गाथा है 5 और 6 नंबर की, 205 और 206 की, उसकी गाथा है और उसकी टीका वहां लिख दी है, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। वह संसार मेरे स्वभाव में है ही नहीं। देखो स्वभाव में हमें कुछ नहीं करना है, तो स्वभाव में से राग द्वेष हटाना कि नहीं हटाना, अरे है ही नहीं वहां पर, समझ में आई ना बात। स्वभाव में कुछ नहीं है, स्वभाव का लक्ष्य करने से पर्याय में से भी राग आदि निकल जाएगा, इतना सहज यानी उसका जिसको कहें सीधा या जो सरल उपाय क्या है, बाहर तो कुछ करना नहीं है, तो राग को कम करना कि नहीं करना, अरे मैं जो है उसमें तो है ही नहीं है, और उसका लक्ष्य करेगी पर्याय, तो जो पर्याय में है वो भी निकल जाएगी, उत्पन्न ही नहीं होगी, ये मार्ग है और इतना सरल है और कुछ नहीं करना है। पर वो हमने करना करना किसको मानना, ये जानने को करना लगता ही नहीं है। वो आज बात आई थी ना गुरुदेव ने, वो मोक्ष पाउड में बहुत बार कही है, वो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष आता है, उसका अर्थ क्या है, हाँ यानी ज्ञान है कौन सा ज्ञान, तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव वो ज्ञान, और उसमें स्थिरता है, उसी को जानते रहना वही क्रिया। लोगों को क्या लगता है, ये शास्त्र का ज्ञान वो ज्ञान और बाहर ये पंच महाव्रतादि क्रिया वो क्रिया, ये मिलकर मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने बताया कि वो जब उसमें थे, कभी संप्रदाय में थे, 1990 की बात है, 91 की वगैरह, 61 की,
संवत 61 में,
यानी तब भी उनके वो इतना श्वेताम्बरों के शास्त्र पढ़कर उसमें से अर्थ निकाला, क्योंकि वो तो अंदर से भाषित होता है।
वो 62 में कन्वर्ट हुए, 1962 संवत,
नहीं नहीं नहीं
70 में तो दीक्षा ली,
नहीं इतनी जल्दी नहीं की,
78 में तो पुस्तक मिला,
78 में पुस्तक मिला बरोबर है, 66 में तो दीक्षा ली उन्होंने, 70 में दी की, हाँ देखो ऐसा अंतर अनुभव होने के बाद क्या, कौन सा अनुभव, संसार मेरे स्वभाव में नहीं है। जब स्वभाव का अनुभव हुआ तो ज्ञानानंद स्वभाव है, उसमें कोई राग आ रही तो स्वभाव में तो कुछ है ही नहीं है, ऐसा अनुभव हो गया उनके। तो ऐसा अंतर अनुभव होने के बाद साधु होना चाहते हैं, यानी वो अपने स्वभाव को ही साधना चाहते, साधु होना चाहते, यानी बाहर बावा हो जाए वो साधु नहीं, वह कुटुंब की आज्ञा लेकर विदा लेते हैं, समझ में आया, और पंचाचार अंगीकार करते हैं, ऐसा भावी नैगम से कहने में आता है, क्योंकि पंचाचार मुनियों के होता है और वो अंगीकार करते हैं, जब कब कहेंगे, उनके वैसा राग आता है मुनि की भूमिका में, जब अंतरंग में इतनी वितरागता है तो बाह्य में ऐसे ही उनके राग विकल्प ऐसे ही हो गए, वो शुभ राग है, और उस भूमिका में वैसे आते हैं उसी को चरणानुयोग की भाषा में मैं अंगीकार करता हूँ या उन्होंने अंगीकार किया, ऐसा कहने की पद्धति है ना। भावी नैगम से कहने में आता है। भावी क्यों कहा? हाँ, जब वो निश्चय प्रकट होगा उस समय उसका उपचार से उसको कहेंगे कि इन्होंने अंगीकार किया। केवल बाह्य में मिथ्या दृष्टि है, उसने कुछ व्रत पालना, शरीर की क्रिया करना आरंभ किया, उसको वो व्रत भी नाम नहीं देते, उसको व्यवहार का नाम भी नहीं मिलता। क्या कहते, समझ में आया? जो कोई साधु होना चाहते हैं उससे पहले अपना ज्ञान और अपना आनंद और ज्ञान ज्योति का अनुभव होना चाहिए। आनंद और ज्ञान ज्योति ने अपना स्वभाव भाव, उसको अनुभव हुआ हो, आत्मा का ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप के अनुभव बिना सम्य दर्शन होता नहीं। तो सम्य दर्शन तो पहले से हुआ है, बाद में साधु पद लेने की भावना है, वह कुटुंब की विदा लेते हैं और पंचाचार लेते हैं, अभी लिया नहीं है लेकिन लेते हैं, ऐसा पहले से भावी नैगम से कथन किया है। और फिर वह कैसा होता है यह कहते हैं। ये हमने हाँ साधु तो आगे की भूमिका, ये तो चौथा पांचवा गुणस्थान है गृहस्थ दशा का, समय दृष्टि है। घर में रहते हुए सब व्यापार धंधा सब चल रहा है, समय तो है उसको, और अधिक आत्मस्थिरता करना चाहते हैं, छठे सातवें गुणस्थान के योग्य वितरागता जब होगी तब उनको साधु कहेंगे। और उनके बाह्य दशा कैसी होती है उसका यह वर्णन है, दोनों का सुमेल है। उसको भी व्यवहार कब कहेंगे? जब अंतरंग में निश्चय है तब, तब तक उसको नहीं कहेंगे। फिर भी अंगीकार किया इसे अभी से कह रहे हैं। अभी से क्यों कह रहे हैं? वो नक्की करने वाले हैं, इसलिए वो भावी नैगम नय, उसका अर्थ है भविष्यकालीन पर्याय का अभी वर्तमान में उपचार करना, उसको कहेंगे भावी नैगम नय। उसकी हमने चर्चा की थी उस दिन। देखो टीका है ना, और तत्पश्चात श्रामण्यार्थी, श्रामण्य ने मुनिपना, और उसका अर्थ यानी जो वो प्रकट करना चाहता है वो श्रावण श्रामण्यार्थी, जैसे विद्यार्थी कहते हम, इसे मोक्षार्थी कहते हैं, इसे ये श्रामण्यार्थी। आत्मा अपना शांत पद, साधु पद, वितराग भाव पद अंगीकार करना चाहते हैं, यानी तीन कषाय के चोकड़ा चोकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता धारण करना चाहते हैं। वह यथाजात रूपधर होता है। यथाजात रूप यानी जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा, उसको कहेंगे यथाजात रूप, और उसको धरने वाला जो उसने प्रकट किया है। यथाजात तो बाह्य निर्ग्रंथ दशा को बताते हैं, पर अंतरंग में भी ये निर्ग्रंथ दशा है, मिथ्यात्व और आगादि से रहित ऐसी अवस्था है, वितरागता की है, जो मुनि योग्य वितरागता होती है उसी को यथाजात रूप धर का। आत्मा वितराग स्वभाव है ऐसा होता है, यानी जैसा स्वभाव है वैसा वो पर्याय में प्रकट होता है, उसको कहेंगे यथाजात रूपधर। क्या कहते समझ में आया? श्रामण्यार्थी जो साधु होना चाहते हैं वह यथाजात रूपधर होता है। जैसा जन्म से आत्मा नग्न होता है वैसे आत्मा, देखो आत्मा कहा शरीर नहीं कहा, वैसे आत्मा अंदर में भगवान तीर्थंकर परमात्मा ने कहा, ऐसा राग बिना, विकल्प बिना, पुण्य पाप बिना, मन बिना, जैसा उसका स्वरूप है, कैसा है तो ज्ञान और आनंद का पिंड कहा है ना, अनंत गुणों का पिंड ऐसा जो भगवान आत्मा है, तो जैसा उसका स्वरूप है उसमें ना राग है ना विकल्प है ना पुण्य पाप है ना मन से वो कुछ ख्याल में आवे ऐसा है, ऐसा वितराग पद रूप यथाजात रूप धारण करता है, यानी ऐसा वितराग पना धारण करता है, वितराग का रूप धारण करता है। रूप धारण करने उसमें ऊपर से कुछ जैसे एक्टर करते हुए ऐसी बात नहीं है, वो प्रकट होता है, वितरागता उनकी प्रकट होती है। तो यथाजात रूप धर होता है। कहो समझ में आया? ये बाहर नग्नत्व की बात नहीं, ये अंतरंग की बात चल रही है, ये बाह्य की बात बाद में कहेंगे, पांच और छह नंबर की गाथा में, मुनि होता है वह पहले सम्यक दृष्टि तो होता ही है, लेकिन उस समय ने दीक्षा लेते समय यथा जात रूपधर होता है ऐसा कहा। देखो, वीतराग भाव, शांत भाव, उपशम रस भाव, तीन कषाय का अभाव, ऐसा यथा जात रूपधर मुनि होता है वह ऐसा ही होता है। यह जैन के साधु, वीतराग परमात्मा का साधु ऐसा होता है, यह इस प्रकार है। अब इसका स्पष्टीकरण करते हैं। ये पहले हुई थी गाथा, फिर दोबारा ली है उन्होंने, प्रवचन फिर दोबारा किया है। प्रथम तो मैं किंचित मात्र भी पर का नहीं हूं। पर में किसको किसको लिया? देखो, मैं एक राग का या शरीर का या मन का किंचित मात्र नहीं, अत्यंत भिन्न पर पदार्थ तो मैं नहीं ही हूं, परंतु अपने ही पर्याय में उठने वाले जो राग है और यहीं पर जो ये शरीर है, कर्म है, जो कोई उदय भाव है, उस रूप मैं नहीं हूं। किंचित मात्र नहीं बताया, समझ में आया? मैं तो आत्मा हूं, वीतराग स्वभाव से भरा पड़ा हूं। देखो, वीतराग का जो पर्याय में प्रकट हुई वो तो बाद में, ये ऑलरेडी वीतराग स्वभावी है, सर्वज्ञ स्वभावी है। स्वभाव तो कभी जब प्रकट होगा तभी, तो स्वभाव कब से होता है? अनादि से है, है और है। तो कहते मैं तो आत्मा हूं, वीतराग स्वभाव से भरा पड़ा हूं, मेरा पर के साथ कोई संबंध नहीं, पर का मैं बिल्कुल नहीं। रागादि व्यवहार रत्नत्रय का, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का जो राग है, उसका भी मैं किंचित हूं नहीं। देव शास्त्र गुरु का तो नहीं हूं, गुरु का तो नहीं, वो तो बात बहुत दूर की हुई। तो कहते उनके प्रति जो राग भाव है वो भी मेरा नहीं है, और वो भी मेरा नहीं है, मैं उनका नहीं, यही कहते। उसका भी मैं किंचित हूं नहीं। हाँ, समझ में आया? मैं किंचित मात्र भी पर का नहीं हूं, राग का मैं नहीं। ये राग को बारंबार पर कह रहे हैं, क्योंकि वो तो अपना लगता है ना, राग है तो अपने से जुदा है, ज्ञान जुदा है, राग जुदा है। जब तक अनुभव में नहीं आया है तब तक वो अपना ही लगता है। जो दयादान आदि का विकल्प राग उठता है उसका मैं जरूर नहीं, मैं तो वीतराग स्वरूप हूं। आहा, समझ में आया? पर भी किंचित मात्र मेरे नहीं है, राग मैं नहीं और राग मेरे में नहीं। समझ में आया भाई? जैन वीतरागी साधु अलौकिक दशा है। जैन परमेश्वर ने जैसा कहा ऐसा साधु पद, अंतर सम्य दर्शन ज्ञान में तो राग का रहितपना हुआ ही है। सम्य दर्शन हुआ तो राग से रहित स्वभाव का अनुभव हुआ है, वो राग को अपने में शामिल करके नहीं जान रहे। दृष्टि और ज्ञान की अपेक्षा से, देखो किसकी अपेक्षा से? दृष्टि में और ज्ञान में तो राग रहित उन्होंने अनुभव कर लिया है, लेकिन यहाँ तो चारित्र की वीतरागता की अपेक्षा से वीतराग 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 भाव हुआ। अरे, मेरा कुछ है नहीं और ये चीज मेरी नहीं। वहां तो राग के रहते हुए भी राग मेरा नहीं ऐसा अनुभव चल रहा है, अभी यहाँ तो इतना तो तीन कषाय का राग रहा ही नहीं उनके, और जो रहा है बाकी संज्वलन का वो भी मेरा नहीं ऐसा जानते है। पर भी किंचित मात्र मेरे नहीं, क्योंकि समस्त द्रव्य, उन्होंने लिस्ट बताई थी समस्त द्रव्यों की है ना, कौन कौन से है? छह द्रव्य, हाँ, अनंत जीव है, अनंत अनंत पुद्गल, सब बताए थे। तो भगवान ने जितने द्रव्य देखे, अनंत आत्माओं, अनंत परमाणुओं, तत्वतः है ना, वास्तव में तत्व दृष्टि से पर के साथ संबंध रहित है, पर के साथ समस्त संबंध रहित है, यानी कोई भी संबंध नहीं है, समस्त यानी सभी, सभी संबंधों से रहित है। इसका अर्थ है कोई भी एक भी संबंध परद्रव्य के साथ मेरा नहीं है। ओहो, यह आत्मा व्यवहार विकल्प जो उठते हैं वो करते ऐसा नहीं कहा, जो राग करते हैं ऐसा नहीं कहा, जो उठते हैं आते हैं उस भूमिका में वैसे राग होगे। कहते व्यवहार विकल्प जो उठते हैं उसके संबंध से भी आत्मा रहित ही है, आत्मा और रहित में अंतर चाहिए, स्पेस। क्या कहते हैं? मैंने व्यवहार के विकल्प क्या है, राग है, पंचमहाव्रत के जो राग है उसके उसके साथ भी आत्मा का कोई संबंध नहीं, उस संबंध से भी रहित है। समझ में आया? 88 पेज पर आएगा। तत्वतः पर के साथ समस्त संबंध, वो संबंध से आगे रहित वगैरह शब्द आएंगे आगे, मेरे और राग के, मेरे और कर्म के, मेरे और गुरु के, मेरे और शास्त्र के, मेरे और देव के, अभी लगाना दुनिया की एक एक चीज उसके साथ लगा लो, इनके बीच कोई संबंध नहीं है, सर्व से संबंध रहित, मैं सर्वथा संबंध रहित हूं। इन्हें प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र अपने से है, उसका परद्रव्य के साथ किंचित भी कोई भी संबंध नहीं है। पहले ये नक्की करना है, नहीं तो निमित्ताधीन तो दृष्टि बनी रहती है। तो सर्वथा संबंध रहित, तो राग के कारण तो मेरी वितरागता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वो तो दो विरुद्ध बातें हैं ना। राग तो बंध का कारण है, वो दुख रूप भाव है, और उससे वितरागता कैसी उत्पन्न होगी? इसलिए इस षड द्रव्यात्मक लोक में, लोक किसको कहेंगे, जहां छह द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं, इस लोक में आत्मा से अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, पूरे विश्व में मैं स्वयं आत्मा हूं, उसको छोड़कर मेरा कुछ भी नहीं है। आत्मा मेरा ऐसा कहना भी वो दो भेद पाड़ के कहने, मैं ही आत्मा हूं ना, और अन्य से किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। लो ये छह द्रव्य भगवान ने देखे, छह द्रव्य, उसमें मेरा आत्मा वितराग भाव से भरा है, इसके अलावा कोई चीज मेरी है नहीं। समझ में आया? षड द्रव्यात्मक लोक में आत्मा से अन्य कुछ भी चाहिए, कुछ ही हुआ है, ऊपर लिखा ना कुछ भी, वो कुछ ही के बदले कुछ भी, वो छी निकालो और उसका छो करो, कुछ भी मेरा नहीं है। इसी पैराग्राफ की पहली लाइन में है, देखो, मेरा कुछ नहीं, मैं पर से शून्य हूं, अपने आनंद और ज्ञान वितराग स्वभाव से भरा पड़ा पूरा हूं। देखो क्या है, आप शून्य रूप हो कि नहीं हो? आशा बे, आप शून्य हो क्या? परिपूर्ण है, भरा पड़ा हूं, पर से शून्य, पर से रहित हो, अपने से नहीं। आज देखिए प्रवचन में वो आया था ना, मोक्ष पाउड में, वो रजनीश थे तभी, शून्य हो जाओ, शून्य हो जाए, ऐसा उनका वो चलता था प्रवचन। ये शून्य क्या हो जाए, ये राग से तो शून्य ही हो, और सबको ऐसा ही वो उपदेश देते थे ध्यान के नाम पर, शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ। यहाँ क्या कह रहे, मैं पर से शून्य हूं और अपने से अशून्य हूं, ऐसा कहते, यानी अपने से भरपूर हूं, किससे, आनंद और ज्ञान वितराग स्वभाव से भरा पड़ा पूरा हूं। ये तो बताने के लिए दो तीन नाम लिए, वैसे अनंत गुणों का पिंड हूं और प्रत्येक गुण में अनंत अनंत शक्ति भरी पड़ी है। देखो यह मुनिपना, समझ में आया? कहते हैं इस प्रकार निश्चित मति वाला वर्तता हुआ, यानी जिसने ऐसा निर्णय कर लिया है, उसकी मति निश्चित हो गई है, सम्यक दृष्टि हो गई उसकी, और परद्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध जिनका आधार है। अभी किसकी बात बताने वाले हैं, हमने पढ़ा था, हाँ सुशीला याद है, परद्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध जिनका आधार है, किन की बात चल रही है, आगे क्या कहेंगे हमने यहाँ नहीं पढ़ा, पर कल परसों पढ़ा, इंद्रियों की बात है, द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय और उसके विषय, उनका आधार, हाँ तो उनका आधार क्या है, हाँ, देखो आपका प्रश्न है भाव इंद्रिय क्या है, तो क्षोभशम ज्ञान की जो पर्याय है, क्षोभशम ज्ञान समझते, अकेले उगाने ने पर्याय वो जानना, उसको जो खंड रूप ज्ञान। क्षोभशम ज्ञान किसको जान रहा है, इंद्रियों के द्वारा पर को जान रहा है, तो उसमें लिमिटेशन है कि नहीं है, क्योंकि जो चक्षु इंद्रिय है तो अपने विषय को जानेगी, वो तो ध्वनि को नहीं जानेगी, स्पर्श को नहीं जानेगी, तो एक तो खंड खंड ज्ञान है, और एट ए टाइम उसमें कितनी लिमिटेशन आती है, वर्तमान को ही जानेगा, सामने उसको इंद्रिय के सन्मुख वाले को जानेगा, इंद्रिय के कॉन्टेक्ट में आए उसको जानेगा, उसकी भी मर्यादा होगी, रेंज होगी। इंद्रिय ज्ञान है तो अभी कर्म का तो कुछ रंग रूप हमको नहीं समझ में आ जा रहा है, उसमें है कि नहीं है, है, फिर भी हम नहीं जान रहे, कर्म इंद्रियों से दिख नहीं रहा, तो उसमें भी कितनी मर्यादा है इंद्रिय ज्ञान में। तो ये जो क्षोभशम ज्ञान है इसको भावेंद्रिय कहते हैं, और ये है शरीर के अवयव, वो जड़ इंद्रिया है, द्रव इंद्रिया, और जो पदार्थ इंद्रियों के द्वारा जानने में आता है उसको भी यहाँ इंद्रिय कह दिया है। तो इंद्रियों का जय जो पाता है, यानी क्या उनको जीतता है, करते क्या है, जितेंद्रिय कहेंगे उसको, इनका लक्ष्य छोड़ के अपने आत्मा में सन्मुख होकर उसका अनुभव करता है, उसने कहा इंद्रियों को जीत लिया। इसको पढ़ेंगे, अभी आधा ही वाक्य हमने पढ़ा। तो कहते परद्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध जिनका आधार है, ऐसे क्या है, ऐसे इंद्रिय और नौ इंद्रिय ऐसे आगे जाके कहेंगे। नेक्स्ट पेज पर बताए, देखो 89 पेज पर, इसी के साथ वो बोल्ड लेटर है ना ये बाजू, हाँ यहाँ पे भी है आगे, तो हम पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं। ये इंद्रियां जड़ है, कौन सी, द्रव इंद्रिया, और भाव इंद्रिय है, भाव इंद्रिय क्या है, इंद्रियों के निमित्त से वो जानने वाली ज्ञान की पर्याय, वो भाव इंद्रिया, और उसका विषय, विषय क्या है, इंद्रियों के पुद्गल के जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उसको ये जानती है, तो ये उनके विषय, ये सब तो जिनका आधार है, ऊपर का वाक्य कंटिन्यूएशन में, ऐसी इंद्रियों और नौ इंद्रियों के, नौ इंद्रिय किसको कहते हैं आशा बहन मालूम है, नहीं नहीं, नौ कर्म नहीं कहा, इंद्रिय ने पांच इंद्रिय कौन से, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये हो गई इंद्रिया, और नौ इंद्रिया क्या है, मन, जैसे करण यानी इंद्रिया, तो ये पांच करण है, और मन क्या है, अंतःकरण है, उसको भी करण कहते मैं, ऐसे नहीं, वो नौ कर्म में आते हैं, जब हम कर्म और नौ कर्म कहते हैं तब उसकी बात है, या इंद्रिया और नौ इंद्रिय कहा, मन को नौ इंद्रिय कहा, नौ कर्म अलग बात है, नौ एन ओ नो, नो एने जिसको भी ईशत जिसका नाम है, यानी इंद्रिया यह बाह्य में दिखती है, वैसा मन तो बाह्य में नहीं है, वो तो अंदर वाला सूक्ष्म उसका परिणमन है तो वो पुद्गल की रचना, द्रव्य मन जो है वो पौद्गलिक है, पर वो सूक्ष्म पुद्गल रूप से वो तो उसका परिणमन हुआ है, और उससे वो द्रव्य मन की रचना हुई है, तो वो बाह्य में नहीं दिखता, उसको नौ इंद्रिय कहेंगे। क्या ये मन वचन का, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये काया तो बाहर स्थूल है ना, वो इंद्रिया तो काया का ही एक अंग है, वो नौ कर्म वो अलग, और यहाँ वचन तो इसमें लिया ही नहीं है। तो ऐसी इंद्रिया और नौ इंद्रियों के साथ, वह तो परद्रव्यों के साथ आधार आधेय संबंध है, मेरे आधार से इंद्रिय नहीं और मैं पर के आधार से नहीं, क्या कहते हैं, वो इंद्रिय और नौ इंद्रियों का आधार किसके साथ है, तो परद्रव्यों के साथ है, परद्रव्यों के साथ है, मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं है, ये आधार आधेय संबंध समझते, आधार किसको कहेंगे, अभी हम कहेंगे ये टेबल के आधार से पुस्तक है कहने के लिए, वैसे कोई किसी का आधार नहीं है, किसी का किसी के साथ आधार आधेय संबंध नहीं है, तो कोई किसी के साथ कोई संबंध नहीं हो तो पहले हमने जान लिया, परंतु हम क्या कहेंगे, ये टेबल के आधार से हमने ये पुस्तक रखा है या ये ठौनी जो रखी है ऐसा कहेंगे, तो ये टेबल को हम आधार कहेंगे, और उसके आधार से रहने वाली चीज को क्या कहेंगे, आधेय। तो ऐसा इंद्रियों नौ इंद्रियों के साथ है ना, वो तो परद्रव्यों के साथ आधार आधेय संबंध है। मेरे आधार से इंद्रिय नहीं है और मैं पर के आधार से नहीं। वो किसके आधार से? वो शरीर के आधार से है, जड़ इंद्रिया जो है ना, मेरे आधार से नहीं है। ये इंद्रिया है वे मेरे आधार से नहीं, ऐसा कहते हैं। पांच इंद्रिया ये जड़ है, वे मेरे आधार से नहीं। मन है वह मेरे आधार से नहीं, वो भी जड़ है। समझ में आया? वह तो परद्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध है। परद्रव्य जड़ के साथ स्वस्वामी संबंध है, वो उनका स्व है, वो उनके स्वामी है। जड़ उसका स्व और स्वामी जड़ है। इंद्रिया मेरी है और मैं स्वामी हूं, ऐसा है नहीं। ये पूरा वाक्य सुनना, ऐसा है नहीं, ऐसा उसका निषेध कर रहे लोग। क्या मानते हैं? ये इंद्रिया मेरी है और मैं उनका स्वामी हूं, तो कहते ऐसा है नहीं। वह तो मिट्टी धूल है। दक्षाबेन मिट्टी धूल क्यों कहा? पुद्गल से बनी है, इसलिए उसको मिट्टी धूल कहा। कहो, समझ में आया? इंद्रिय से मैं काम लू, वह मैं चीज ही नहीं, फिर क्या क्या कहते हैं? ये मेरी चीज नहीं है तो उससे मैं कैसे काम ले सकता? इंद्रिया मेरे से जुदी है बिल्कुल। यहां ऐसा यहां कहते हैं, भाई इंद्रिय और मन से मैं काम लू ऐसा है नहीं। उसे तो आधार जड़ का है ना, मेरे आधार से है नहीं, और मेरी चीज ये है और मैं उसका स्वामी हूं, ऐसा हूं ही नहीं। क्या कहते हैं? ये कौन सी इंद्रिया मेरी चीज है और मैं उनका स्वामी हूं, ऐसा है नहीं, तो मैं उनसे काम लू, ये बात कहां से आई? हा हा हा, भगवान आत्मा अपना ज्ञानानंद स्वभाव, ये अपना स्व है, उसका स्वामी है। ये ज्ञानानंद आदि स्वभाव का आधार मैं हूं, ये स्वभाव मेरे आधार से है, मैं आत्मा और ये मेरा स्वभाव। लेकिन इंद्रिया और मन का आधार मैं नहीं। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई, वितराग का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। मुमुक्षु पूछते हैं, कोई जीव हो तो इंद्रिया काम करे। वो हमें मिले थे ना, कहां? दुबई में एक जन, जैसे वो खिलौने होते हैं बैटरी पर चलते हैं, जब तक बैटरी डाले उसमें चाबी लगाए तो वो तो चलता रहता है उनका कुछ, वैसे जब तक आत्मा है उसकी बैटरी चलती है तब ये सब काम चलता है। ये पूछ रहे, जीव हो तो इंद्रिया काम करे। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, जीव हो तो इंद्रिया है ऐसा नहीं, वह हो तो है, जीव हो तो है ऐसा नहीं, पुद्गल द्रव्य हो तो है, मैं हूं तो वह है ऐसा है नहीं। आहा, मैं तो आत्मा हूं, ज्ञानानंद स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा जैसा आत्मा मेरा है, जैसे सर्वज्ञ भगवान का है वैसा मेरा है, कह रहे मेरे में और मेरे आधार से इंद्रिया है और मेरे में इंद्रिया है ऐसा है नहीं। क्या कहते? मेरे में इंद्रिया नहीं है। आप कहते मेरे आधार से तो है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। देखो, अतीन्द्रिय होता है, वस्तु का स्वरूप अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय इंद्रियों से पार है। दृष्टि में तो पहले अतीन्द्रिय हुआ है, लेकिन अब इंद्रिय के संबंध का जो राग था उससे रहित मैं हूं, ऐसा कहते हैं। देखो, जैन दर्शन का मुनिपना, भाई जैन दर्शन क्या? वस्तु का स्वरूप ऐसा है। समझ में आया? नहीं, जैन दर्शन क्या बात है? ये अन्य दर्शन जैसा अपना एक कोई मान्यता है क्या? तो कहते वो तो वस्तु का स्वरूप है। जैन दर्शन ये जो रियलिटी है, वस्तु स्वरूप को बताने वाला है। यहां लिखा है ना, जैन दर्शन क्या है? तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है, परद्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध जिनका आधार है, ऐसी इंद्रिया और नौ इंद्रिया यानी मन, उनके जय से, उसका जय किया है किसने? आत्मा ने। उनका जय किया है, उनका लक्ष्य छोड़कर अपने में स्थिर हो गया है। जितेंद्रिय होता हुआ उसको कहते हैं जितेंद्रिय, उसका मेरे में अभाव है, उसे में उसका मेरे में अभाव किया है, संबंध छोड़ दिया है, मेरे स्वभाव के साथ संबंध किया, इंद्रिय और मन से संबंध छोड़ दिया। क्या कहना चाहते हैं? अभी क्या है, उपयोग बारंबार इंद्रियों के द्वारा पर की ओर चला जाता था, अब उनका संबंध ही छोड़ दिया। न इंद्रिया मेरी है, न भाव इंद्रिया, जिन्हें उससे निमित्त से होने वाला ज्ञान मेरा है, उसका लक्ष्य छोड़कर अपना लक्ष्य कर दिया, अपने में स्थिर हो गया। इसको क्या कहते हैं कि उनके साथ संबंध छोड़ दिया है, मेरे स्वभाव के साथ संबंध किया, यानी अभी उपयोग अपने में लगाया, इंद्रिय और मन से संबंध छोड़ दिया है। आहा, देखो यह मुनिपना समझ में आया। सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में तो पर के साथ संबंध है नहीं, इतना तो छूट गया, लेकिन यहाँ तो बाकी रहा राग और इंद्रिया निमित्त रूप थी, वे भी मेरे संबंध से नहीं, जड़ के आधार से है, मेरे आधार से नहीं, मैं उसका आलंबन लेता हूँ और मेरे में कुछ होता है ऐसी चीज मैं हूँ नहीं। क्या कहना चाहते हैं? पहले मैं जब समय दर्शन प्राप्त किया, ऐसा ही जीव है ना, ये समय दृष्टि है, तो जब उसने समय दर्शन प्राप्त किया था तो पर के साथ कोई संबंध नहीं है तो उसके मान्यता हो गई थी, अनुभव में भी हो गया था, परंतु अभी राग बाकी था और इंद्रियों का भी अभी अवलंबन है, क्योंकि चौथे और पांचवे गुणस्थान वाले को इंद्रिय संयम तो है ही नहीं है, यानी पांच इंद्रिय और मन संबंधी जो है, यानी उसका अवलंबन अभी चल रहा है, निमित्त रूप से है वहां पर। अब मुनिराज होते तो उसका भी अवलंबन छोड़ दिया, तो क्या कहते हैं? तो राग और इंद्रिया निमित्त रूप थी, किसको? चौथे पांचवे गुणस्थान वाले को, वे भी मेरे संबंध से नहीं। ये कौन कह रहे हैं? वो श्रामण्य अर्थी, और वो भी भावी निगम से अभी कह रहे हैं, जड़ के आधार से है, मेरे आधार से नहीं, मैं उसका अवलंबन लेता हूं और मेरे में कुछ होता है ऐसी चीज मैं हूं नहीं। इंद्रिया है तो इंद्रिय से मैं जानता हूं, सुनता हूं, ऐसी चीज हूं नहीं, ऐसा कहते। क्या कहते हैं? अभी इंद्रिया है तो इंद्रियों के कारण मैं सुनता हूं, जानता हूं, ऐसी मैं चीज हूं नहीं, ऐसा कह रहे। देखो मुनिपना वितराग का, कहते हैं जितेंद्रिय होता हुआ वह श्रामण्यार्थी आत्मद्रव्य का यथा निष्पन्न, निष्पन्न ने कोई तैयार तो नहीं हुआ था, यानी जैसा अनादि से है वैसा, उसको कहा यथा निष्पन्न, जैसा आत्मा है, कैसा है? वितराग, निर्दोष, आनंद स्वरूप, शुद्ध रूप धारण करने से, यानी यथा निष्पन्न शुद्ध रूप धारण करने से, जैसा वो है वैसा रूप धारण करने से। लो अंतर का रूप यथा जात रूप धर होता है, ये अंतरंग की बात पहले उठाई यहाँ पर, और बाह्य की बात वो 205 और 6 नंबर में बाद में उठाएंगे। वैसे जैसेन आचार्य ने तो टीका में दोनों को लिया है, निश्चय से यथाजात रूप है और बाहर में शरीर की अपेक्षा से भी नग्नत्वादी वो जो है वो यथाजात रूप है। लो इतनी व्याख्या हुई, यथा जात रूप अर्थात जैसा प्रभु आत्मा है ऐसी दशा में वितरागता हुई, उसका नाम यथा जात रूप, यानी जैसा स्वभाव है वैसी वितरागता प्रकट हुई, पर्याय में अंतरंग में निर्ग्रंथता हुई, क्योंकि ग्रंथ है नहीं वो परिग्रह, तो अंतरंग परिग्रह में पहला कौन सा है? कौन सा है? मिथ्या। तो और फिर वो आप आश्रव के भेद बता रहे, इन्होंने बताया ना क्रोध मान, मिथ्या तो पहला, फिर क्रोध मान माया लोभ, एक और चार पांच हो गए, और नौ, नौ कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा त्रिवेद पुरुषवेद और नपुसकवेद, ये अंतरंग परिग्रह है। परिग्रह में पहला नाम है मिथ्यात्व का, वो परिग्रह लगता है क्या? अरे वो क्या है मालूम नहीं है, हम तो परिग्रह किसमें गिनते हैं, हमारे पास कितने बिल्डिंग है, कितना कार है, यानी कितने बैंक बैलेंस कितना है, हा? कितने जोड़ी कपड़ा रखना है उसको हम परिग्रह समझते हैं और उसकी मर्यादा कर लेते हैं ना, अरविंद जो कैम लेते हैं तो उसकी भी मर्यादा करनी कि नहीं करनी। मैं चाहता कि इन्हें थोड़ा रखना थोड़ा बाकी निकलना वो पूरा निकालना पड़ेगा।
तो वो परिग्रह रखना क्या नहीं रखना,
अरे वो तो पूरा ही निकालना है अंतरंग में से। हाँ प्रकार है वो, परंतु तो गृहित तो अनादि से चल रहा है और नया और धारण किया उसको हम गृहित करेंगे किसके उपदेश है या स्वयं ही ऐसे दो वैसे कहेंगे तो हम मिथ्या तो क्या आप पूछ रहे हैं ना। हाँ तो कैसे दो गृहित अगृहित या पांच प्रकार से उसका स्वरूप कहेंगे तो एकांत है विपरीत है अज्ञान है विनय है संशय है वो क्या है वो सब मिथ्यात्व के प्रकार हुए अलग अलग। वो बहुत विस्तार से लिए इन्होंने बहुत बार लिए और आपके पास वो पुस्तकें दिए वो ऐसे रखी क्या आपने जैन सिद्धांत वाले है ना उसमें से पढ़ना। हाँ वो सभी सभी में आता है यहाँ क्या कहते देखो कहाँ गए हम नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ना
नीचे से पांचवी लाइन
नीचे से पांचवी लाइन जैसा जन्म है यानी जैसा है वैसा रूप का धरने वाला आत्मा होता है बराबर। वह विकल्प के साथ संबंध नहीं मन के साथ संबंध नहीं वाणी के साथ संबंध नहीं शरीर के साथ संबंध नहीं कर्म के साथ संबंध नहीं। हमने संबंध की क्या बात है उस रूप ही अपने को मान के रखा है यानी आत्मा नाम की मैं कोई अलग चीज हूँ ये तो मालूम ही नहीं है और यही शरीर ही मैं हूँ और जो कर्म के उदय में जो कोई भाव हो रहे उस रूप में हूँ राग रूप में हूँ ऐसा ही मान लिया है तो उसमें मेरा अस्तित्व भिन्न है ज्ञान और आनंद स्वरूप है मैं मेरा स्वरूप है और ये सभी चीजें मेरे से जुदी है ऐसा उसने कभी सुना भी नहीं और जानने की और अनुभव करने की बात तो आगे की है। नहीं नहीं किसी के साथ संबंध नहीं है ये जो शरीर भी है वहां वाणी भी है वहां उसका परिणाम भी चल रहा है वहां उस समय वो बोलता है कि नहीं बोलता है? अरे उसका तो जानने का कार्य चल रहा है वाणी वाणी के कारण वहां निकलती है अभी उसके साथ उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं टोडरमल जी की भाषा में इसे वाणी के साथ शरीर के साथ यहाँ हाथ की क्रिया हो रही है बोलने की क्रिया हो रही है और जीव जानने का कार्य कर रहा है उसके तो वैसे परिणाम है बोलने के वगैरह समझाने के परंतु ये बोलने की क्रिया आत्मा की नहीं है वो भाषा वर्गना का कार्य वो जड़ है तो जीव का उनके साथ कोई भी संबंध नहीं है पहले में पहले ये नक्की करना ये तो अभिमान हो जाता है ना देखो मैं कैसा अच्छा गाता हूँ कैसा सुंदर बोलता हूँ कैसा व्याख्यान करता हूँ ऐसा ही उसमें अभिमान हो गया शरीर से देखो मैं कैसा धट्टा कट्टा हूँ ये क्या है उसने अपने को शरीर रूप मान लिखा। यहाँ क्या लिखते देखो कि मन के साथ विकल्प के साथ संबंध नहीं विकल्प ने राग अपने में जो कोई शुभाशुभ भाव हो रहे उसके साथ कोई संबंध नहीं है मन के साथ संबंध नहीं है वाणी के साथ संबंध नहीं है शरीर के साथ संबंध नहीं है कर्म के साथ संबंध नहीं है। छह द्रव्य स्वरूप लोक में मेरी अन्य कोई चीज है नहीं किसी के साथ मेरा संबंध है नहीं पहले में पहले ये नक्की करना है। प्रत्येक द्रव्य ऐसा ही स्वतंत्र है अपने से है पर द्रव्य से वो बिल्कुल लगा हुआ नहीं ऐसी वितनाग दशा प्रकट हो उसका नाम परमेश्वर का साधु। ये कहने पूर्ता हम सीख गए ऐसी बात नहीं है ऐसे अनुभव से समझना है जैन साधु कहने में आता है। मुमुक्षु जैसी अंतर में परिणति होती है जब तो इंद्रियों का कपड़ा लत्ता पालते हैं गुरुदेश कहते बिल्कुल नहीं इंद्रिय फिंद्रिय है नहीं फिर कपड़ा लत्ता कहाँ से आया वो पीछे आएगा अभी आएगा यानी वो बताएंगे उसके बारे में कहते हैं कि मैं ओहो हो मुनिपना कैसा है। देखो मुनिपना में कोई वस्त्र नहीं होते कोई बहिरंग परिग्रह बिल्कुल नहीं है मैं तो आनंद हूँ। समय दर्शन हुआ उसमें से ऐसी दृष्टि पहले से हो गई है कि विकल्प मात्र, मन मात्र मेरी चीज है नहीं। समझ में आया? समय ज्ञान में ऐसा अनुभव हो गया। लेकिन जो अस्थिरता कमजोरी से राग द्वेष आदि उत्पन्न होता था और इंद्रिय के संबंध के लक्ष्य संबंध के चाहिए का संबंध से लक्ष्य जाता था, वो लक्ष्य करना बराबर, वह कहते कि वह लक्ष्य जाता था जाता है, वह मैं नहीं। क्या कहना चाहते हैं? समय दर्शन हुआ, समय ज्ञान हुआ तो ये विकल्प मन, ये कोई मेरी चीज नहीं है, वाणी शरीर से मैं जुदा हूँ, कर्म से जुदा हूँ, उदय भाव से जुदा, ये सब उसको अनुभव से पता चला। परंतु अभी अभी भी राग है कि नहीं विद्यमान, विकल्प भी है और इंद्रियों का भी निमित्त है वहां पर, इंद्रियों के द्वारा पर का लक्ष्य करके भी वो राग द्वेष भी यथा योग्य मात्रा में उत्पन्न हो रहे, क्योंकि चौथे वाला है पांचवे वाला है, अनंतानुबंधी वाला नहीं है, मिथ्या तो नहीं रहा है, फिर भी राग भी है और इंद्रियों के साथ वो जुड़ रहा है अभी भी। यह कहते ना कि अस्थिरता यानी कमजोरी से राग द्वेष आदि उत्पन्न होता था और इंद्रिय के संबंध के लक्ष्य जाता था, वह कहते कि वह लक्ष्य जाता है, वह मैं नहीं, मेरा तो वह लक्ष्य भी अब तो छूट गया। ये कौन कह रहे? अभी श्रामण्य मुनि कह रहे, यानी इंद्रिय से जो लक्ष्य जाता था, उपयोग जो बारंबार इंद्रिय के द्वारा पर की ओर जाता था, वह भी अभी नहीं रहा, अभी उपयोग को अपने में ही समेट लिया, ये कहना चाहते। उसी को कहते यथा जात रूप धर होता है, जैसे आत्मा अनादि से है, जैसा उसका स्वभाव है वैसे पर्याय में उन्होंने प्रकट कर लिया है। लो उसका नाम सम्य दर्शन के अनुभव सहित वितरागता की पर्याय प्रकट हो। पहले सम्य दर्शन था, अनुभव भी था, उस सहित अभी स्थिरता के द्वारा वितरागता की पर्याय प्रकट हो। ये कैसी वितरागता? पहले नहीं थी, वह चौथे के योग्य थी, अब ये कैसी है? मुनि योग्य है। तो वितरागता की पर्याय प्रकट हो, उसका नाम भगवान साधुपद कहते हैं। समझ में आया? अब 205 206 गाथा, ये उन्होंने दोबारा लिया था 204, पूरा जो पहले से उन्होंने ली थी। मुमुक्षु कहते संक्षेप में पूरा हुआ, गुरुदेव कहते संक्षेप में पूरा हुआ, कल आ गया था ना, इसलिए संक्षेप में पूरा हो ना, पहले आए उस समय जैसा आए ऐसा फिर से आए, कल बहुत चला था, नए आदमी थे और गुजराती में था, गुजराती हो तो ज्यादा चलता है, इसमें तो हिंदी में तो शब्दों में लक्ष्य में रुकना पड़ता है ना, लक्ष्य यानी उसके शब्दों की तरफ लक्ष्य जाता है तो थोड़ा अटकाव आता ही जाता है। ऐसा यथा जात रूप हुआ, बाह्य में भी नग्न दशा हो गई। अमृतचंद्राचार्य देव ने यहाँ वह नहीं लिया, क्या कहते हैं उनकी टीका में, यथा जात रूप धर का अर्थ केवल अंतरंग में निर्ग्रंथ दशा, वितराग दशा अंतरंग में, बाह्य नग्नत्व की बात उन्होंने उठाई नहीं है। किसने? अमृतचंद्राचार्य। तो कहते उनको कहते वह नहीं लिया, यानी उसकी बात नहीं उठाई, अंतर में ऐसी वितरागता हुई तो बाह्य में भी नग्न दशा हो जाती है, करनी पड़ती नहीं, पुद्गल की पर्याय पुद्गल के अनुसार उस प्रकार की दशा हो जाती है, कपड़ा उतारना लेना मुनि को है नहीं, मुनि को कपड़े होते ही नहीं। समझ में आया? वह यहाँ कहेंगे, वो तो अभी 205 और 6 में वो बात अभी उठाएंगे बाह्य दशा की। अब अनादि संसार से अनभ्यस्त, देखो अनादि संसार में आत्मभान बिना जैन का द्रव्यलिंग मुनिपना जो धारण किया था, तो मुझे उसके व्यवहार का अभ्यास भी नहीं था। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तो कहते ना अनंत मार द्रव्यलिंग धारण किया, तो व्यवहार का तो अभ्यास था कि नहीं? तो कहते नहीं, व्यवहार का अभ्यास कब कहेंगे? जब निश्चय होगा तब उसको ना व्यवहार कहेंगे। तो वितरागता सहित वाला व्यवहार उसका अभ्यास तो उसको हुआ ही नहीं, और ये बाह्य का ही अभ्यास करना चाहते हैं। नहीं, प्रैक्टिस तो करनी है ना, अभी मुनि होना है तो प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? एक बार खाना खाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यानी इसी को मुनिपना मान के रखा है। अरे, वितरागता के साथ वाली वो बात है, वो वितरागता के साथ मिलेगी क्या? पहले से उसका अभ्यास होगा, ख्याल में आई ना बात? ये अभ्यास करने की बात नहीं है, ऐसे वो चलता है। अमुक का अभ्यास तो करे, अभ्यास तो करे, मूल बात का तो अंतरंग में पता नहीं है, और बाह्य चीजों का, बाह्य क्रियाओं का ही अभ्यास करना चाहता है। ये यानी मूल मिथ्या तो वैसा ही कायम रहा, ये कह रहे, क्योंकि व्यवहार पर है, तो पर है ऐसा मेरा अभ्यास नहीं था। समझ में आया? क्या कहते हैं ये जो व्यवहार है, नहीं, क्या है? विकल्प है, विकल्प पर है। अभी उसको सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, तो विकल्प पर है ऐसा अभ्यास था क्या उसको? तो नहीं था। और ये कहते नहीं, मुझे वो व्यवहार का अभ्यास करना है। अरे, पर व्यवहार पर है ऐसा अभ्यास पहले होना चाहिए। पहले मिथ्या तो वाली बात तो पहले उसको निकाल बाहर करनी है, वो तो कायम रखी, और केवल क्रिया अभी विकल्प और वो क्रिया, वो मेरी है, मैं करता हूँ, उससे लाभ होता, ये मान्यता कायम रही, और उन क्रियाओं का अभ्यास किया, तो उसके तो मिथ्या तो ही पुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? ख्याल में आई ना बात? उसको तो अभ्यास क्या करना था? ये तो सम्यक संबंधी वो कैसे हो उसका अभ्यास करना था, उसके बारंबार लेना था विचार में, कि विकल्प रूप जो दशा है, जो उठते हैं विकल्प, उस रूप मैं नहीं हूं, ये पहले मैं अभ्यास करना था। उसने तो नहीं, ऐसा विकल्प होता है मुनि को और ऐसे उनकी बाह्य दशा होती है, तो शरीर की ये क्रिया करनी चाहिए, तो शरीर की क्रिया की और वैसे शुभरा लाने की कोशिश की, क्योंकि उसका कर्ता बनकर बैठा है ना, तो उसने अभ्यास क्या किया? उसके साथ संबंध तो दृढ़ बनाया, एक्चुअली उसके साथ संबंध तोड़ना था, इसने तो संबंध और दृढ़ किया, इसलिए उसका ये मिथ्या तो कायम रह गया। भले बाह्य में द्रव्यलिंग हो, ऊपर के स्वर्गों में चला जाए, तो भी उसके हाथ में कुछ नहीं आया, ये कहना है। हो गया समय? ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ हमने पढ़ा ना, हो गया ना?
दो तीन लाइन रह गए,
क्योंकि व्यवहार पर है, पर है ऐसा मेरा अभ्यास नहीं था, मेरा वितराग भाव है रागादि पर है ऐसा मेरा अभ्यास अनादि से कभी था ही नहीं। ये मूल अभ्यास होना चाहिए था, वो तो कभी किया ही नहीं, और राग करने की प्रैक्टिस की और बाहर की क्रिया मेरी है समझकर प्रैक्टिस करने की कोशिश की। अब यही रुकेंगे हम, यहीं से कल पढ़ना है, और 96 के बाद हमको पीछे जाना है इस 80 पेज पर। कहाँ पर है वो? 94 पर है क्या? चावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो सुवाणी मस्तकनम सदा देत हो। रक्षा बेन।